Okay, so the topic for today's discussion is post-corona world order or post-corona situations, India and the new world order. So I'm going to share my thoughts with you. If you want, you can share your questions with me. Okay, to begin with, if you want to look at how the new world order is going to shape up post-corona situations, you have to look at four different models. The way different countries have handled corona. So I look at broadly four models. These four models are, see, one is a model of the authoritarian regimes, like what we saw in China, where there was no transparency, where there was no what you can say credible information. And in fact, because of the role played by China and because of the information which was hidden by China. So, my favorite hashtag on Twitter is China lied, people died. So that is one of the models which we have seen, that we don't even know that how many people have actually died in China. Now let's come to the second model. The second model is of typical capitalist and materialistically developed countries like you had US and Europe. What happened in US and Europe? We are just witnessing that the casualty there has been increasing exponentially. And in fact, in US, the people are out on the road because they are opposing the lockdown. The governments there also, they are giving bigger priority, or their preference is more to run an economy rather than saving lives. So this is what you call a dehumanized model. So that is another model. Then come to the third model, it was seen in Pakistan, Iran, and in Gulf, where the religious minorities are being discriminated against. So that is the third model, which is largely what you call the Islamic States model, or the fundamentalist model, or what I call the ultra-Orthodox States model. The fourth model is that of India, where 1.3 billion people, they locked themselves down. The society is working along with the government and the administration, and we are trying to deal with the problem. In fact, the whole world is quite astonished. A lot of people have a lot of problems with this thing, that why India doesn't have such a high death toll. There have been, doomsayers, and they have been predicting. So first they said, no, India is entering the, ultimately it is going to enter the third stage. Then they said India will finally enter the third stage around 25th of March. Then they said around 30th of March. Then they said around 5th of April. But fortunately, we have not entered the third stage. So and the there was a spurt in the cases when this whole fiasco of Tablighi Jamaat happened. But now that has also been largely brought under control. So what we are witnessing is a brilliant, brilliant effort where the society and the people have come together, cutting across political affiliations, cutting across religious, caste, creed lines, cutting across, economic status. So this is the model which is ultimately proving to be the best model, and the whole world is looking at us. Now, post Corona world, there are two or three things which I want to share with you. First is that there has been a lot of concern about, what is going to happen as far as the state of economy is concerned. Now, my belief is that India is going to bounce back in a big way. In fact, it's going to be, this coronavirus thing, it's proving going to prove to be a blessing in disguise. Because across the world now, there is a concern about, and there is a lot of anger about the way China has handled the thing. So there are a lot of people who want the investments to take, who want that the investment should be taken out of China. And let me tell you, no businessman or no entrepreneur would like to work in a country or in a state which is not transparent when it comes to handling natural calamities, or when it comes to handling even man-made calamities, or when it comes to handling diseases like this. the way the city of Wuhan was locked down and the way the whole system worked absolutely in a non-transparent manner. So that creates an atmosphere of uncertainty, and this atmosphere of uncertainty is not suitable for any business enterprise. So we have already seen that Japan has already created a fund. They have decided to take most of the investment out of China. Right now, because China has the capability to supply, you know, a lot of medical equipment and health equipment to countries which are trying to fight coronavirus. So right now there is no what you call manifestation of that anger or manifestation of, you know, that that sense of betrayal which the whole world is facing. Because but what we are going to see post coronavirus situation in next three, this quarter is going to be a little difficult, but if from next quarter onwards, India is going to become a major hub of investment. My prediction is, or my assessment is, and I've been a student of economics, I've worked as a journalist also, covered business and economy for more than a decade. So my sense is that India is going to get huge investments from all over the world. Also, the way China has bullied the rest of the world in this crisis, it has been, you know, supplying faulty healthcare, it has been supplying substandard masks, it has manipulated WHO, and let me tell you, China has been able to manipulate WHO because the WHO chief is from Ethiopia. In Ethiopia, China has made huge investments, and China has a big stake in Ethiopia and of course in rest of the Africa also, and China played a major role in installing the current WHO chief there. So that's why, you know, it is very shocking that even a few days ago China increased the death toll, which it had earlier mentioned, by almost 50%, and the WHO was sitting pretty there. So anyway, so what we are witnessing, what we are going to witness, that most of the entrepreneurs, they are going to, most of the big FIIs, most of the big investors, they are likely to take their investment out from China, and they would like to back India because in this part of the world, India is the only country which can stand up to China. Now, India has some distinct advantages. One, it has a democratic setup. Second, if we are able to handle the coronavirus the way we have handled it, it will bring a lot of reassurance to the rest of the world that, okay, my investment will be much safer in India than even in my own country. Third, we have the largest pool of young population. Fourth, we have a huge number of English-speaking population. And fifth, Indians are pretty hardworking. We have a very, very stable government here. And in most of the state governments, the governments are pretty stable. The political situation is absolutely suitable for any entrepreneur. And as we have seen in the Vodafone case, there is a specific grievance redressal mechanism which is there. So which is not there in China. China is an authoritarian regime. In fact, my assessment, and there's a lot of I would suggest all of you to read. There's a lot of good stuff on China. There's a lot of interesting stuff on China in on the Epoch Times. तो ये तो जो है बात मैंने अभी तक आप लोगों से अंग्रेजी में की. अब मैं आज हम जिस चीज पे चर्चा, मैं थोड़ी सी इस बात को जो है हिंदी में भी जो है वो आपके साथ शेयर करता हूँ. देखिए ऐसा है कि ये जो पोस्ट कोरोना वायरस के बाद, यानी कोरोना वायरस के बाद, ये दुनिया जो है पूरी तरह से बदलने वाली है, और उस दुनिया के अंदर भारत की स्थिति क्या होगी, हम इसके ऊपर आज जो है चर्चा कर रहे हैं. मैं आपके साथ अपने विचार इस पर साझा कर रहा हूँ. उसके बाद आप अगर चाहें तो मुझसे सवाल भी पूछ सकते हैं. मैं जितना अभी प्रयास होगा कोशिश करूंगा आपके सवालों का उत्तर देने की, जवाब देने की. देखिए पहली बात यह है कि ये जो बड़े सारे डूम सेयर्स हैं जो ये कह रहे हैं कि नहीं, भारत की अर्थव्यवस्था जो बिल्कुल बैठ जाएगी और पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था बैठ जाएगी और बड़ा खराब वक्त आने वाला है, मैं उनसे सहमत नहीं हूँ. मेरा मानना यह है कि हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था जो है उसके लिए एक सबसे सुनहरा काल आने वाला है, ये कोरोना वायरस की समस्या खत्म होने के बाद। दुनिया भर के अंदर चाइना के प्रति एक बहुत ज्यादा गुस्सा है कि उन्होंने जिस तरीके से पूरी दुनिया के अस्तित्व को खतरे में डाल दिया, उन्होंने आंकड़े छुपाए, उन्होंने ये भी नहीं बताया कि उनके वहां जो है ये वायरस इतनी तबाही मचा रहा है। लगभग 70 लाख चीनी जो है दुनिया भर से जो है चाइनीज न्यू ईयर मनाने के लिए जनवरी में वहां इकट्ठे हुए थे, और वो 70 लाख चीनी जो है दुनिया के अलग अलग हिस्सों में गए। आप सोचिए कि उनमें से कितने लोग जो है वो कोरोना वायरस से अफेक्टेड होंगे। इसलिए हमने देखा कि अमेरिका में जो हुआ, इटली में हुआ, स्पेन में हुआ, यूके में हुआ, ऑस्ट्रेलिया में हुआ, पूरे यूरोप में जो है वो, और अमेरिका में बड़ी स्थिति जो है वो खराब हुई। तो फिलहाल इस समय कोई अपना गुस्सा जाहिर नहीं कर रहा है, और गुस्सा इसलिए जाहिर नहीं कर रहा है क्योंकि अभी सबको चीन से जो है कुछ मेडिकल इक्विपमेंट की जरूरत है, कुछ मास्क की जरूरत है, पीपीई किट्स की जरूरत है, तो ये चीन से जो है बल्क में सप्लाई में जा रही है। इसलिए अभी फिलहाल चीन को इस समय संकट के दौर में कोई नाराज नहीं करना चाहता, लेकिन ये बात ध्यान रखिए कि दुनिया भर में उसके प्रति गुस्सा है। जो दुनिया भर के बिजनेसमैन है वो इस बात को लेकर भी परेशान है कि एक ऐसे देश में हम कैसे जो है अपने बिजनेस कर सकते हैं जिसके अंदर की इतनी ज्यादा नॉन ट्रांसपेरेंसी है, पारदर्शिता का जिसमें अभाव है, जिसमें पता ही नहीं है कि कौन सी बीमारी कब आ जाएगी, और उसकी रोकथाम के लिए सरकार जब कदम उठाएगी तो किसी भी प्रांत को जो है, वुहान में 6.5 करोड़ के करीब लोग जो है वो रहते थे, उसको लॉकडाउन आपने कर दिया, ये भी नहीं बताया अभी तक कि कितने लोग मारे गए हैं, अलग अलग आंकड़े आ रहे हैं। और तो ऐसे पारदर्शिता का जहाँ जहाँ पर अभाव होता है, ऐसी जगह पर बिजनेसमैन जो है वो बिजनेस करने से हिचकता है। चाइना में अब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं है, चाइना में जो है वो अब अनसर्टेनिटी ऑफ डूइंग बिजनेस है, द रिस्क ऑफ डूइंग बिजनेस इज टू ग्रेट। तो ऐसी स्थिति में भारत जो है वो एक अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन के रूप में इमर्ज होगा। जापान ने ऑलरेडी चाइना से अपनी इन्वेस्टमेंट विड्रॉ करने की जो है का प्रोसेस शुरू कर दिया है, उसके लिए उन्होंने एक फंड भी क्रिएट किया है। आगे आने वाले दिनों में कई और देश ऐसा करेंगे कि वहां से अपनी इन्वेस्टमेंट ड्रॉ करेंगे। दूसरी बात, तो मैं आपसे ये कह सकता हूँ कि इस क्वार्टर के बाद, इस तिमाही के बाद भारत में बड़ी तादाद में जो है इन्वेस्टमेंट आएगी। सवाल ये है कि हमारे में उस इन्वेस्टमेंट को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी और कैपेबिलिटी है कि नहीं, तो ध्यान हमें इस बात पर देना होगा। दूसरी बात, जहां दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाएं जो है वो बुरी तरह से बुरी हालत में पहुंचने वाली हैं, वहां भारत की अर्थव्यवस्था जो है, इंडियन इकोनॉमी जो है, वो कुछ घरेलू कारण भी है जिसकी वजह से बाउंस बैक करेगी, और जिसकी वजह से हम दुनिया के अंदर अगले 1 साल के अंदर नंबर 2 या नंबर 3 की इकोनॉमी जो है इमर्ज हो सकते हैं। मुझे लगता है कि 2 साल में हम जो है शायद अमेरिका को भी पीछे छोड़ देंगे जो है अर्थव्यवस्था के मामले में, और चीन के साथ हमारी टक्कर रह जाएगी, और 3 से 5 साल में हम चीन को भी पीछे छोड़कर दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर उभरेंगे। देखिए, चीन में वैसे भी सामाजिक तनाव बहुत ज्यादा है, चूंकि वहां सेंसरशिप है इसलिए लोगों को पता नहीं चलता है, लेकिन चीन में बहुत सारे विरोधाभास हैं, बहुत सारे कॉन्ट्राडिक्शन हैं। मुझे कोई हैरानी नहीं होगी कि अगर अगले 3 से 5 साल के अंदर इफ वी सी चाइना टू बी वी सी चाइना एज डिसइंटीग्रेटेड, मतलब चीन का अगर विखंडन हो जाए, डिसइंटीग्रेशन हो जाए, तो मुझे कोई हैरानी नहीं होगी। जहां तक भारत का सवाल है, भारत ने एक तो बाहर से इन्वेस्टमेंट आना, दूसरा आर्थिक, जो भारत की अपनी अर्थव्यवस्था है, हमारे यहाँ पे घरेलू मांग जो है वो, डोमेस्टिक जो डिमांड जो है वो बड़े पैमाने पर फिर से जो है वो खड़ी होगी। जो करंट गवर्नमेंट है वो एक अच्छा काम ये कर रही है, हो सकता है अभी मिडिल क्लास को ये लग रहा है कि हमारे लिए तो कुछ किया नहीं है इस सारी समस्या में, लेकिन इस सरकार का पूरा जोर इस समय इस बार बात पर है कि किसी तरीके से किसानों की फसल जो इस समय कटी है उसकी खरीदारी हो जाए। सो एक बार किसानों के हाथ में पैसे पहुंच जाएंगे तो इंडियन इकोनॉमी को किक स्टार्ट करना जो है मुश्किल नहीं रहेगा। दूसरी चीज, पूरी दुनिया के अंदर जो एक मॉडल, इकोनॉमिक मॉडल चलता रहा है कि जिसमें जो वेस्ट का मॉडल है, जिसमें ज्यादा से ज्यादा, इट्स अ कंजम्पशन ड्रिवन मॉडल, कि आप ज्यादा से ज्यादा उपभोग करिए, ज्यादा से ज्यादा पैसा खर्च करिए। अनफॉर्चुनेटली हमारे देश में भी जो सक्सेसिव गवर्नमेंट्स है, लगातार सरकारें 1991 के बाद से, जब से इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए, ये डिमांड ड्रिवन मॉडल पर ही जोर दे रही है, बट उसके बावजूद जो भारतीयों की, आम भारतीयों की जो जीवन शैली है, जैसे हमारे यहाँ अगर कोई भी आपको विंडफॉल गेन आता है, कभी भी कहीं से पैसे आते हैं, तो हम थोड़ा पैसा उसमें से बचा के रख लेते हैं। हम जो है उपभोग उतना ही करते हैं जितनी कि हमें जरूरत है, कभी कभी थोड़ा सा उससे ज्यादा भी कर लेते हैं, लेकिन मूलतः हर भारतीय के घर में कुछ ना कुछ बचत जरूर है। वेस्ट में ऐसा नहीं है, मोस्ट ऑफ द पीपल इन द वेस्ट दे आर लिविंग बेसिकली आउट ऑफ देयर क्रेडिट कार्ड्स। तो इसीलिए वहां पर एकदम से जब भी कोई संकट आता है, क्राइसिस आता है, लोगों की नौकरियां जाती हैं या इकोनॉमिक एक्टिविटी थोड़ी धीमी पड़ जाती है, सो पीपल हैव अ देयर इज अ ह्यूज प्रॉब्लम, द इकोनॉमी गेट्स कॉट इनटू अ विशियस सर्कल, जो इकोनॉमी एक दुष्चक्र में फंस जाती है। लेकिन हमारे यहाँ आप ये देखेंगे, चाहे वो 99 था, चाहे वो 2008 था, जब जब दुनिया के अंदर क्राइसिस आया, हिंदुस्तान के अंदर कभी भी इतना बड़ा जो है इकोनॉमिक क्राइसिस नहीं आया। कारण हमारे एक एवरेज हाउस होल्ड जो है उसके पास सेविंग रहती है, उसके पास कोई थोड़ा गोल्ड या सिल्वर, थोड़ी ज्वेलरी रहती है, तो वो उसका एक बफर है जिसको कि वो अपने पास रखता है जो है एक आम भारतीय परिवार, और वो अगले 3, 4, 5, 6 महीने तक के लिए कम से कम उसकी जो बेसिक नीड्स हैं वो पूरी हो जाती है। तो ये जो है हमारी इकोनॉमी की स्ट्रेंथ है, और मुझे मेरा अपना मानना ये है कि सरकार को भी जो है दोबारा से अपने इकोनॉमिक पॉलिसी के ऊपर जो है नजर डालनी चाहिए, और जो ये बार बार कोशिश की जा रही है रेट ऑफ इंटरेस्ट सेविंग्स पर घटाकर लोगों को कि आप जो है ज्यादा से ज्यादा कंजम्पशन करिए, आई डोंट थिंक दैट इज द राइट मॉडल। दैट इज अ मॉडल विच हैज बीन ड्रिवन बाय द वेस्टर्न फिलोसफी एंड और द वेस्टर्न इकोनॉमिक फिलोसफी। जब हम वेस्टर्न इकोनॉमिक फिलोसफी की बात करते हैं तो एक छोटी सी बात हो रही है, पूरी दुनिया के अंदर एक नया इकोनॉमिक मॉडल इमर्ज होने वाला है, और मुझे लगता है कि भारत उस इकोनॉमिक मॉडल को जो है वो सामने रख सकता है। जी, इकोनॉमिक मॉडल क्या है? अगर जो लोग अर्थशास्त्र पढ़ चुके हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ चुके हैं, वो तो जानते ही होंगे, जो नहीं पढ़ चुके मैं उन्हें बता देता हूँ। पिछले 200 साल से, लगभग 150-200 साल से, इस पूरी दुनिया की जो इकोनॉमी है और जो इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं, कोई भी देश हो, कोई भी समय हो, कोई भी काल हो, पिछले 200 साल में वो रिकार्डो नाम के एक इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने एक थ्योरी दी थी, थ्योरी ऑफ कंपेरेटिव एडवांटेज। तो ये पूरी दुनिया की इकोनॉमिक्स उसी के ऊपर चल रही है। रिकार्डो की थ्योरी क्या थी? रिकार्डो की थ्योरी ये थी कि मैं मान लीजिए भारत है, या एक्स कंट्री है और वाई कंट्री है, एक देश के अंदर एक पर्टिकुलर चीज को जो है वो सस्ता पैदा करने की कैपेसिटी है, तो वो बाकी चीजों को पैदा ना करे। यानी कि अगर भारत दूध पैदा कर सकता है तो सिर्फ दूध पैदा करे, और चीन पनीर पैदा कर सकता है तो सिर्फ पनीर पैदा करे, और हम जो है जितना दूध हम एक्स्ट्रा जो है पैदा करेंगे वो चीन को बेच देंगे, और चीन से उसके बदले में जो चीन ने एक्स्ट्रा पनीर पैदा किया होगा वो ले लेंगे। ये मॉडल जो है, इस मॉडल की वजह से ही ये दुनिया बार बार, अगर आप देखेंगे तो हर 10 साल 15 साल के बाद किसी न किसी मंदी के दौर में, किसी इकोनॉमिक क्राइसिस में फंस जाती है। असल में हमारा जो मॉडल है, जिसे हम आप एक भारतीय मॉडल कह सकते हैं, जिसकी शुरू से महात्मा गांधी ने भी जिनके बारे में चर्चा की, वो था स्वदेशी का मॉडल। स्वदेशी का मॉडल यानी कि हम अपनी जरूरत लायक सारी चीजें जो है वो अपनी कंट्री के अंदर ही प्रोड्यूस करें, और पूरी दुनिया के अंदर जिसको अब आप प्रोटेक्शनिज्म का नाम दे रहे हैं, ग्रेजुअली द होल वर्ल्ड इज नाउ मूविंग अवे फ्रॉम द रिकार्डोस थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज एंड द वर्ल्ड इज मूविंग टुवर्ड्स मोर ऑफ अ स्वदेशी मॉडल। तो ये एक, जिसको आप हिंदू फिलोसफी या भारतीय फिलोसफी के हिसाब से जिसको कह सकते हैं कि ऑल द गुड्स विच और सर्विसेज विच आर रिक्वायर्ड दे शुड बी प्रोड्यूस इंडिजनसली, एंड देन इफ यू आर प्रोड्यूसिंग एनीथिंग एडिशनल देन यू कैन एक्सपोर्ट दैट। तो क्योंकि आप एक चीज ये देखिए कि अभी यूरोप जो है, यूरोपियन यूनियन ने इटली से माफी मांगी है, क्योंकि जब इटली को मदद की जरूरत थी जब ये शुरू हुआ, तो यूरोपियन यूनियन के बाकी देशों ने जो है वो अपने एक्सपोर्ट्स जो है बंद कर दिए। उन्होंने कहा कि हम करेंगे ही नहीं, हम इटली की कोई मदद नहीं करेंगे, और ये यूरोपीय संघ के नाम से एक जो है एक बड़ा मॉडल बनाया गया था कि किस तरीके से हम ने देखा कि एक मॉडल था कि कैसे सारे देश इकट्ठे आकर जो है और एक वैश्विक प्लेटफॉर्म बना रहे हैं और एक दूसरे की मदद करें। ये सारे मॉडल फेल हो चुके हैं, क्योंकि ये सारे के सारे मॉडल मेटेरियलिस्टिक फिलोसफी और कंज्यूमर ड्रिवन इकोनॉमिक्स पर आधारित थे, यानी कि उपभोग करें, उपभोग करें, उपभोग करें। ये सही मॉडल नहीं है। जो सही मॉडल है वो जो भारतीय अवधारणा है विकास की, दी इंडियन फिलोसफी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जो है जिसका कोर जो है बेस है वो है कंजम्पशन और सेविंग के बीच में जो है एक बैलेंस मेंटेन करके रखना। दी होल वर्ल्ड इज नाउ गोइंग टू अडॉप्ट दैट, एंड आई थिंक। और आप एक और चीज ये देखिए कि जो इंडियन ट्रेडिशनल नॉलेज है, आज चाहे वो गिलॉय टैबलेट्स की बात हो, चाहे वो तुलसी की बात हो, जो ऑल्टरनेटिव मेथड्स ऑफ हीलिंग हैं, पूरी दुनिया वेजिटेरियनिज्म की तरफ दोबारा से जा रही है, तो जो भी हमारी फिलॉसफी की जो है आप जो है द पेस ऑफ द लाइफ इज गेटिंग स्लोड डाउन, और जो है वो प्रकृति का जो संतुलन है वो वापस आ रहा है। आप लोगों ने वेनिस में जो है वो डॉल्फिन्स की पिक्चर्स देखी होंगी, और अपने आसपास भी देख रहे हैं कि जो महानगरों में रहते हैं कि चिड़िया और पक्षी जो है जो हमने देखे नहीं थे बड़े लंबे समय से, वो हमारे आसपास हैं। तो ये सब भारतीय, ये विकास की भारतीय अवधारणा है। हमने पश्चिम से प्रभावित होकर विकास की इस भारतीय अवधारणा को छोड़कर और पश्चिम की अवधारणा को अपना लिया था। एंड सीधा आयरनी, मतलब विडंबना देखिए कि आज पश्चिम जो है विकास की उस भारतीय अवधारणा को अपनाकर अपना अस्तित्व बचाने की कोशिश कर रहा है। कुल मिलाकर मुझे ये लगता है कि 21वीं शताब्दी जो है वो भारत की शताब्दी होगी। हम वी आर गोइंग टू एंटर इन टू अ गोल्डन ईरा। आप लोगों को मुझे नहीं लगता कि कोई अपना मनोबल कम करने की जरूरत है। हम एक बहुत अच्छे और सुनहरे दौर में जा रहे हैं, और भारत ने अभी तक जिस तरीके से COVID-19 का मुकाबला किया है वो अपने आप में इतिहास में एक उदाहरण के रूप में जो है वो गिना जाएगा। एंड वी आर गोइंग टू द वे वी हैव शोड दिस वर्ल्ड द वे वी हैव शोड दिस वर्ल्ड हाउ टू फाइट COVID-19। हमारे यहाँ से तो दवाइयाँ जा रही हैं ना सब पूरी दुनिया में जो है, और इंडिया इज वन ऑफ द चीपेस्ट ड्रग प्रोड्यूसर्स। सो बट आई एम सेइंग इज दैट द गोल्डन टाइम्स आर अहेड, एंड द ओनली थिंग इज दैट वी नीड टू बी प्रिपेयर्ड टू ग्रैब द। देखिए एक सवाल जो आया है वो ये है कि विद कंट्रीज लुकिंग फॉर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स अदर देन चाइना, कैन इंडिया अफोर्ड टू बिकम अ मैन्युफैक्चरिंग हब विच अल्टीमेटली लीड्स टू मोर पॉल्यूशन। देखिए जैसे मैंने आपसे कहा कि मैन्युफैक्चरिंग हब भारत बन सकता है, निश्चित रूप से वियतनाम है, कंबोडिया है, बहुत सारे जो कंट्रीज हैं, बट यू नो देर इज एनफ स्पेस। चाइना के साथ प्रॉब्लम ये है कि चाइना हैड दैट इम्पीरियलिस्ट स्ट्रीक कि जो होगा हमारे पास होगा, हम दूसरे को नहीं करने देंगे। जैसे मैं आपको एक उदाहरण, एक आंकड़ा बताता हूँ, आपको जान के बड़ी हैरानी होगी कि यूएन की 11 बॉडीज हैं, यानी संयुक्त राष्ट्र की, यूनाइटेड नेशंस की 11 बॉडीज हैं, उसमें से चार बॉडीज के हेड इस समय चाइना के हैं, चाइनीज हैं। चाइनीज गवर्नमेंट ने उनको इंस्टॉल करवाया है, और वो पूरी तरह से जहां पे भी कोई चाइनीज इंटरेस्ट को लेके थोड़ा सा भी वो प्रॉब्लम होता है या कोई भी दूसरा देश आगे बढ़ने की कोशिश करता है वो उसको उसी समय इंस्टॉल कर देते हैं। तो देयर इज एनफ स्पेस फॉर एवरीबडी, और हिंदुस्तान जो है जो अगर मैन्युफैक्चरिंग का हब बनेगा, तो मैंने आपसे कहा कि हमारे में कैपेबिलिटी होनी चाहिए। इट इज नॉट नेसेसरी, वी कैन ब्रिंग बेटर टेक्नोलॉजीज, वी कैन ब्रिंग क्लीनर टेक्नोलॉजीज, एंड इंडिया इटसेल्फ हैज द कैपेबिलिटी ऑफ डेवलपिंग सच टेक्नोलॉजीज। इनफैक्ट अगर आप पिछले कुछ समय में देखें तो ज्यादातर जो अच्छी बड़ी टेक्नोलॉजीज हैं, इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजीज जो है, उसमें हिंदुस्तानियों का बहुत बड़ा योगदान है। आप बड़ी जितनी ग्लोबल कंपनियां हैं उनके सीईओज देखिए, वो इंदिरा नूई हों, वो सत्या नडेला हों, अपार्ट फ्रॉम दैट देयर मेनी अदर्स ऑल्सो। सो इंडियंस आर एवरीवेयर। सो तो हिंदुस्तान के लोगों में कैपेबिलिटी है। इट इज नॉट नेसेसरी कि अगर मैन्युफैक्चरिंग हब हिंदुस्तान बनेगा तो यहाँ पे पॉल्यूशन होगा ही होगा। मैंने आपसे कहा यही हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यही हमारा टेस्ट है कि हम सारे प्रोटोकॉल्स, प्रोसेसेस, प्रोसीजर्स के साथ जो है वो तैयार हैं कि नहीं है। दैट इज वट इज रिक्वायर्ड। ये जरूरी है कि हम इसकी तैयारी करके रखें। देखिए एक सवाल आया है कि वट डू यू सजेस्ट ऑन इम्पोर्टिंग द मटेरियल्स फ्रॉम चाइना। देखिए फिलहाल तो क्या है कि कुछ चीजें हैं जिसमें कि हमारे पास विकल्प नहीं है। मैंने आपको जो स्थिति बताई कि भारत अल्टीमेटली एक नया वर्ल्ड ऑर्डर, स्वदेशी इकोनॉमिक्स का कैसे इमर्ज होगा, इसमें 3 2 3 साल 4 साल लगेंगे इसको पूरा होने में। आप इमिजिएटली अपनी डिपेंडेंस खत्म नहीं कर सकते हैं, लेकिन इस समय मुझे नहीं लगता कि चाइना से जो हम मटेरियल इंपोर्ट कर रहे हैं उसका भी फिलहाल कोई ऑप्शन है। बट आई थिंक ओवर अ पीरियड ऑफ नेक्स्ट 1 ईयर और सो वी आर गोइंग टू सी अ पैराडाइम शिफ्ट। हम एक महत्वपूर्ण बदलाव देखेंगे सरकारी नीतियों में भी और प्राइवेट सेक्टर के अपने कामकाज करने के, भारतीय प्राइवेट सेक्टर में भी। वी आर गोइंग टू सी सेटिंग अप ऑफ न्यू हब्स। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, ई रिक्शाज हैं। जैसे पहले शुरुआत में सारे ई रिक्शाज और सारे पार्ट्स जो है वो हम सभी अपने शहरों में आसपास देखते हैं जो बैटरी रिक्शाज हैं, वो बाहर से इम्पोर्ट हो रहे थे, चाइना से ही सारे इम्पोर्ट हो रहे थे। अब जो है वो 50% चाइना से इम्पोर्ट हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने की फैक्ट्रीज लगा ली हैं। इसमें से भी बैटरीज जो है वो अभी भी 80-90% जो है चाइना से इम्पोर्ट होती हैं। बट नाउ देर आर सम इंडियन मैन्युफैक्चरर्स हु आर सेटिंग अप बेसिकली दी बैटरीज हेयर ऑल्सो। और तो इसलिए मुझे लगता है कि इट विल टेक टाइम, बट राइट नाउ वी स्टिल हैव लॉट ऑफ डिपेंडेंस ऑन द होल वर्ल्ड हैज डिपेंडेंस ऑन इट। और अभी संकट का समय है, तो अभी इस समय हम जो है उनसे इम्पोर्ट करना बंद नहीं कर सकते। देखिए ऐसा है कि एक ये विल सर्ज इन अनएम्प्लॉयमेंट पुश मेनी बिलो द पॉवर्टी लाइन एंड रिजल्ट्स इन मोर डेथ्स फ्रॉम हंगर। देखिए वैसे मेरा अपना मानना यह है कि एक तो ना भारत में आजादी के बाद से लेके आज तक कभी ऐसा हुआ ही नहीं है कि एम्प्लॉयमेंट के मामले में हमारी स्थिति कभी बड़ी अच्छी रही हो। हमारे यहाँ हमेशा ही अनएम्प्लॉयमेंट जो है बड़ी संख्या में रहती है। लेकिन दूसरी चीज ये भी है कि लोग ये बात भूल जाते हैं कि दूसरे देशों में और हमारे देशों में बड़ा फर्क है। हमारे यहाँ जैसे जब अनएम्प्लॉयमेंट होती है तो हमारे यहाँ फिर भी एक सोशल वेलफेयर सिस्टम भले ना हो, लेकिन हमारे यहाँ एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था है, महानगरों में भले ही ना हो लेकिन गाँव में, कि अपने आसपास के घरों में लोग अमूमन ये सुनिश्चित करते हैं कि कोई भी व्यक्ति भूखा ना सोए। और दूसरी चीज ये है कि असंगठित क्षेत्र में बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो कि आपको लगता है, जैसे कि मान लीजिए किसी परिवार में बेरोजगारी है, तो उस परिवार की महिला जो है वो पापड़ बनाकर अचार बनाकर जो है वो जब तक कि उसके जो परिवार के पुरुषों को रोजगार नहीं मिलता वो काम चलाती हैं। इसके अलावा जो है वो देर इज लॉट ऑफ प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन विच ऑल्सो हैपन्स जो है। तो इसलिए एक तो जितनी हमें भयावह करके दिखाई जाती है कि अनएम्प्लॉयमेंट की इतनी बड़ी समस्या भारत में है, क्योंकि हम अनएम्प्लॉयमेंट को भी जो है वो वेस्ट के जो फ्रेमवर्क है उससे नाप रहे हैं कि अगर इतने घंटे काम नहीं मिला और इतने पैसे नहीं मिले तो एक आदमी बेरोजगार है। लेकिन हमारे यहाँ ऐसी व्यवस्था नहीं है, हमारे डिफरेंट जो है सिस्टम है, डिफरेंट सोशल नॉर्म्स है। तो उसके हिसाब से देखेंगे तो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है, अनएम्प्लॉयमेंट थोड़ा सा बढ़ेगा भी, बट वी आर विल बी एबल टू बाउंस बैक। इट इज जस्ट अ पीरियड ऑफ इट इज जस्ट टाइम फ्रेम ऑफ बेसिकली 2 to 3 months। आई थिंक आप चौथे महीने से रिकवरी देखना शुरू कर देंगे। मतलब अगर मैं आपसे कहूं तो अगस्त ऑनवर्ड्स आई सी अ मैसिव 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 रिकवरी हैपनिंग। देखिए एक ये पोस्ट कोविड दो सवाल है। यू सेड दैट इन कमिंग टाइम वी विल रिसीव ग्रेट अपॉर्चुनिटीज, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन दिस इन ब्रीफ, व्हाट टाइप्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज। देखिए एक तो जो यानी कि सवाल ये है कि आप मैंने ये कहा कि अपनी बातचीत में कि हमें काफी अवसर मिलने वाले हैं, नए अवसर मिलने वाले, तो किस तरीके के अवसर मिलेंगे। देखिए एक तो भारत जो एक अच्छा बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बनने जा रहा है, सर्विसेज सेक्टर में भी भारत में जो है वो नए जो है अपॉर्चुनिटीज इमर्ज होंगी। ऑल्टरनेटिव जो हीलिंग मेथड्स हैं, जो ऑल्टरनेटिव मेडिसिन हैं, होम्योपैथी है, यूनानी है, आयुर्वेदिक है, दिस इज ऑल्सो गोइंग टू सी अ मेजर मेजर इंक्रीज इन डिमांड, और इसमें भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज जो है इमर्ज होंगी। और आई थिंक इट इज गोइंग टू बी अक्रॉस ऑल द स्पीयर्स, देर विल बी लॉट मोर जॉब्स, देर विल बी लॉट मोर स्टार्टअप्स। द गवर्नमेंट इज ऑल्सो गोइंग टू फर्दर ईज द नॉर्म्स ऑफ डूइंग बिजनेस। ऑलरेडी आरबीआई ने एक पैकेज अनाउंस कर दिया है, और सरकार खासकर जो है वो स्मॉल एंड मिडिल एंटरप्राइजेस इन पर ध्यान दे रही है। मुझे ये लगता है कि एक बड़ा चेंज जो आने वाला है, मैं इस सवाल को भी साथ में ले लेता हूँ, पोस्ट कोविड विल देयर बी लाइफ स्टाइल चेंज इन इंडिया, इफ येस वट वुड बी इट्स इम्पैक्ट ऑन इकोनॉमी। देखिए मुझे लगता है पोस्ट कोविड एक बहुत बड़ा चेंज जो आने वाला है वो ये कि आई थिंक द ईरा ऑफ बिग कंपनीज इज ओवर, द ईरा ऑफ मीडियम एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस जो है वो जो है इमर्ज होगा, क्योंकि उनमें ज्यादा फ्लेक्सीबिलिटी होती है। जब इस प्रकार के संकट आते हैं तो जो बड़ी कंपनियां होती हैं वो उनकी एस्टेब्लिशमेंट कॉस्ट इतनी हाई होती हैं और उनकी प्रोडक्शन लाइन इतनी फिक्स्ड होती है दैट दे कैन नॉट चेंज द प्रोडक्शन लाइन इमीडिएटली। लेकिन एक छोटा जो एमएसएमई है कैटेगरी में आने वाला जो उद्यम है, यानी कि मीडियम एंड स्मॉल एंटरप्राइज जो है, वो अपनी प्रोडक्शन लाइन को भी बड़ी तेजी से चेंज कर लेता है, अपने प्रोडक्ट मिक्स को भी तेजी से चेंज कर लेता है। सो आई थिंक दैट इज वट वी आर गोइंग टू सी। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ कि एक फैक्ट्री है जिसके अंदर मान लीजिए कि एथेनॉल प्रोड्यूस होता है या एथाइल अल्कोहल प्रोड्यूस होता है, तो वो बड़ी क्विकली जो है सैनिटाइजर भी जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। वो सैनिटाइजर्स अगर जो है 45% अल्कोहल कंटेंट के साथ प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो वो 65% उनको अपनी मशीन में प्रोडक्शन लाइन में चेंज करने में ज़्यादा समय नहीं लगता। तो इसलिए मुझे लगता है कि आने वाले समय में आई थिंक ईएफ शूमाकर ने जो कहा था कि स्मॉल इज गुड, आई थिंक दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू सी, द वे वी आर थिंकिंग, द वे वी आर लुकिंग एट लाइफ, आई थिंक दैट हैज अंडरगॉन अ ह्यूज चेंज द लास्ट 3-4 वीक्स। I think it's going to change further. ये अभी आप लोगों को अंदाजा नहीं हो रहा है, it will take time to sink in. But when it will sink in, you will see a profound change in our outlook towards life. And when that outlook towards your life changes, then everything changes. Whether it is the way you look at economic issues, the way you look at jobs, the way you look at, you know, whatever, the way you look at consumption, saving, the way you look at, I think the whole world has realized that they need to try and find a balance, and we had lost the equilibrium in our race, which was driven by either the socialist model, communist model, or the capitalist model. I think we need to find a middle ground. The whole world has realized, and India is a living example of middle ground, and that's why, and it has depicted that it has successfully managed COVID-19 so far. And that's primarily basically because it is standing on that middle ground. What changes do you expect in education system and in job opportunities in India post COVID? I think post COVID we are going to see a massive spurt in, you know, online education, of course, and skill development. That is what, because we'll require different skill sets. Also because people were unfortunately kind of losing their jobs in the short run. So I think the best way for them to make a comeback is to go learn a new skill set and make a comeback. So that is one thing which we are going to see. I think health and pharma sector are going to see a major boost. And then as far as how will this affect on educational institutions in this academic year? This is another question. देखिए, इस साल तो मुझे लगता है कि एजुकेशनल जो है, आई थिंक प्रोबेबली फर्स्ट क्वार्टर इज गॉन, सो वी हैव टू सी हाउ द बोर्ड रिजल्ट्स, द गवर्नमेंट इज वर्किंग ऑन द एजुकेशन पॉलिसी, आई थिंक देर इज नॉट मच क्लैरिटी ऑन इट, सो आई एम नॉट श्योर, बट आई थिंक वी आर ऑलमोस्ट काइंड ऑफ, यू नो, इफ इट गेट्स एक्सटेंडेड, विच आई होप नॉट, एंड वी आर ऑलमोस्ट मूविंग टुवर्ड्स अ जीरो ईयर काइंड ऑफ अ थिंग, वी आर ऑल द स्टूडेंट्स विल बी प्रोमोटेड टू द नेक्स्ट ईयर, एंड मे बी, यू नो, द गवर्नमेंट प्रोबेबली what you call semester or the educational year will start by, I think, August, September. So I think they will cut down on the curriculum and bring a little bit of tweaking in the examination system. But we'll see that how the admissions and all that happen in colleges. But I think the educational year which we are looking at, it's going to be almost over 3 quarter. We're not going to see a 12-month education. Post COVID, what skill set will be in demand? That is the question. I think post COVID, one is, of course, I think, as I said earlier, that pharma and health sector, so anything related to that. And of course, I think biotechnology is another sector. So then construction, I believe, is going to see a major boom. So anything related to construction. And so largely, I would say, you know, the niche skill sets, data analysis and data management. Especially, you know, data analysis. So data science is going to be big thing. So I think you should be looking at these opportunities. Of course, education. And then I think food and restaurants and hospitality is going to take a hit over the next, you know, 2-3 quarters. So usme se aapko, mujhe lagta hai ki aapko jo hai wo skill set apne jo hai pharma sector, education sector, e-commerce is big thing. ई-कॉमर्स का आपको जो है, खासकर जो है नॉन फूड सेक्टर में जो है, तो इस पे आपको ध्यान देना चाहिए जो है, आई थिंक दैट इज गुड. एंटरटेनमेंट एंड फूड एंड रेस्टोरेंट्स एंड हॉस्पिटैलिटी, ये थोड़ा सा मुझे लगता है कि इसमें स्लंप रहेगा, अभी कम से कम अगले 8 महीने साल तक तो रहेगा। देखिए स्किल डेवलपमेंट एक सवाल है कि जो हाउ डू यू हाउ कि जो यूथ है वो कैसे अपनी स्किल्स को डेवलप करे और एजुकेशन को कैसे अपने दुरुस्त करे, अपडेट करे, जिससे कि और क्या हम सेल्फ स्किल डेवलपमेंट कर सकते हैं। एक तो बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज जो हैं वो अवेलेबल हैं, वो आपको करने चाहिए टाइम टू टाइम, और खासकर जो लोग जॉब कर रहे हैं उनको भी करने चाहिए। एक हमारे यहाँ ये भी दिक्कत होती है कि एक बार एक व्यक्ति की नौकरी लग जाती है तो उसके बाद उसको लगता है अब मुझे जीवन में दोबारा किताब उठा के पढ़ना नहीं है या अपनी स्किल सेट डेवलप नहीं करनी है। ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। देखिए हर 5 साल से 7 साल में मार्केट के अंदर जो है वो कोई ना कोई नया डिसरप्टर आता है और इकोनॉमी या मार्केट जो है वो अपने आप में पूरे एक तरीके से फंडामेंटली चेंज हो जाती है। तो आपको अपने आप को रीइन्वेंट करना जरूरी है हर 5 से 7 साल में, उसके लिए आपको नए स्किल सेट सीखने चाहिए। मैं सभी लोगों से आग्रह करूंगा, एक स्किल सेट ऐसा है जो आप किसी भी उम्र में हो सीख सकते हैं, वो है लर्न एन एडिशनल लैंग्वेज। ये एक अच्छा, आपको कोई भी आप जॉब करेंगे तो एक एडिशनल लैंग्वेज स्किल होना, आप फॉरेन लैंग्वेज सीखिए, एडिशनल इंडियन लैंग्वेज सीखिए, तो दैट इज वन थिंग विच यू कैन लर्न। इट इज मच, इट इज वेरी कॉस्ट इफेक्टिव एंड इट इज वेरी ल्यूक्रेटिव, और आप इंडिपेंडेंटली भी इट कैन यू नो यू कैन इंडिपेंडेंटली वर्क विद दैट स्किल ऑल्सो, एंड दिस स्किल विल हेल्प लाइफ लॉन्ग। तो एक एडिशनल लैंग्वेज सीखने की तरफ आप जोर दीजिए। वट विल बी द सिचुएशन ऑफ फार्मर्स आफ्टर COVID-19, हाउ दे कैन मेक इम्पैक्ट ऑन इकोनॉमी एंड देयर पर्सनल इकोनॉमिक ग्रोथ। जी एक सवाल ये आया है। देखिए ऐसा है कि इस देश के अंदर ना बड़ा एक संकट और एक बड़ा, इसको आप विडंबना ही कह लीजिए, इस देश की जो है हम बचपन से जो है एसेज में लिखते आए, पढ़ते आए हैं 6ठी 7वीं क्लास से कि भारत एक कृषि आधारित देश है। तो इस देश के अंदर अगर सबसे खस्ता हाल किसी की है तो वो है किसानों की। तो किसान और ये दो वर्ग इस देश के ऐसे हैं जो जब से हमें आजादी मिली 15 अगस्त 1947 के बाद से, तब से जब भी हर चुनाव होते हैं उसमें यही होता है कि किसानों की हालत बड़ी खराब है और युवाओं के पास नौकरी नहीं है। और अब जो है सब लोग इस चीज के आदी हो चुके हैं जो है। तो मुझे लगता है COVID-19 के बाद एक काम लेकिन बहुत अच्छा हुआ है कि इस बार कि मैं इस मामले में मोदी सरकार जो है की भी और जो स्टेट गवर्नमेंट है उनकी भी मैं प्रशंसा करूंगा कि किसानों की खरीद की बाइंग की जा रही है और किसानों को हाथ के हाथ ज्यादातर जगहों पर पैसे दिए जा रहे हैं, और गवर्नमेंट जो है वो ये इंश्योर कर रही है कि किसी भी किसान की उपज का एक भी दाना अनबिकाना रह जाए। तो आई थिंक पोस्ट और किसानों के अकाउंट्स में पैसे भी डाल दिए गए हैं। इनफैक्ट सरकार की जो प्रायोरिटी है केंद्र सरकार की वो है किसान और जो श्रमिक हैं जिन्हें हम मजदूर कहते हैं, और खासकर असंगठित क्षेत्र के जो है, ये पहली प्रायोरिटी है सरकार की। इसीलिए सरकार ने अभी तक जितने पैकेजेस अनाउंस किए हैं उनके लिए किए हैं। जो बिजनेस कम्युनिटी है, जो ट्रेडर्स हैं, जो MSMEs हैं, वो सेकंड प्रायोरिटी है। जो प्रोफेशनल मिडिल क्लास है वो थर्ड प्रायोरिटी है। ये इसीलिए आप देखेंगे कि सरकार इसी प्रायोरिटी के हिसाब से कदम उठा रही है। तो गवर्नमेंट का ये मानना है कि किसान के हाथ में अगर एक बार पैसा पहुंच गया तो इकोनॉमी किक स्टार्ट करने में जो है कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मुझे लगता है कि पोस्ट कोरोना जो है वो किसानों की स्थिति जो है वो शायद पहले से बेहतर ही होगी। मुझे नहीं लगता कि किसानों की स्थिति जो है वो खराब होगी। और ऐसे दुखद बात तो ये है कि कई जगहों पे किसानों की स्थिति ऑलरेडी इतनी खराब है कि अब उससे खराब और हो भी नहीं सकती है, उससे बेहतर ही हो सकती है। बट आई थिंक दिस गवर्नमेंट हैज लॉन्च नंबर ऑफ स्कीम्स एंड दी स्कीम्स आर वर्किंग फॉर्चुनेटली, क्योंकि लीकेजेस और जो है ना वो बंद कर दी गई। देखिए इस देश में किसानों के लिए कभी भी योजनाओं की कमी नहीं रही, लेकिन ये होती थी कि पैसे नहीं पहुंचते थे उनके पास। आज ये है कि सरकार ने जो जनधन अकाउंट खोल के और एक सारा जो है एक बैंकिंग सिस्टम में इस तरीके से सारा कर दिया है उन्होंने, एक ऐसी व्यवस्था बना दी है कि जिस बेनिफिशियरी के पास पैसा पहुंचना होता है उसके पास डायरेक्ट पैसा पहुंच जाता है। टेक्नोलॉजी की वजह से ह्यूमन इंटरवेंशन को मिनिमाइज कर दिया गया, जिसकी वजह से करप्शन मिनिमाइज हो गया। तो ये किसानों के लिए एक बड़ी जो है वो सुखद बात है। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में जो है वो देखिए, जब इंडस्ट्री बढ़ती है, जब बाहर से बिजनेस आएंगे और वो होगा, तो नेचुरल बात है कि एग्रीकल्चर को भी फायदा होगा. सो आई थिंक जो है वी द फार्मर्स आर ऑल्सो गोइंग टू हैव अ गुड टाइम. जी, एक ये अच्छा सवाल है, विल द सर्च इन द हेल्थ सेक्टर इंक्लूड अदर सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन लाइक आयुर्वेदा, होम्योपैथी एंड बिल्कुल, मैं तो ये मानता हूँ कि जो सर्च हेल्थ सेक्टर में आएगा, इट विल बी लेड बाय बेसिकली यू नो समथिंग लाइक आयुर्वेदा एंड होम्योपैथी. और देखिए, ये अचानक नहीं हो रहा है, योग जो है वो हॉलीवुड से और वैसे योगा होकर वापस आ गया हम लोगों के घरों में. आज पूरी दुनिया जो है आप देखिए कि हर जगह जो है योग के स्टूडियोज बने हुए हैं, और तरह तरह के जो है योग जो है उसके ऑफशूट्स निकल, पावर योगा, ठीक है ना, एंड ऑल काइंड ऑफ स्टफ. सो द इंडियन सिस्टम ऑफ हीलिंग और द इंडियन वे ऑफ लाइफ, जिसको आप कहते हैं कि भारत का जो जीने का तरीका है, जो हमारे पूर्वजों ने बड़ी साइंटिफिक रिसर्च के बाद एक फिक्स किया जो है, तो वही तरीका जो है अल्टीमेटली देखिए सस्टेनेबल. यूएन तो आज जो है वो एसडीजी की बात कर रहा है. आप हमारे जो वैदिक फिलोसफी उठा के देखिए, आप स्वामी विवेकानंद को पढ़िए, अगर लेटेस्ट उसमें वेदांता आपको पढ़ना है तो वेदांत पढ़ना है. हमारे यहाँ तो बात ही सारी की सारी जीवन भर में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की गई है. हमारे यहाँ तो जब श्राद्ध होता है तो उसमें भी जो है, जो हिंदू परिवार है उसमें आप देखते होंगे, जब श्राद्ध होता है तो उसमें कि एक भोजन का हिस्सा कुत्ते के लिए, एक भोजन का हिस्सा कौए के लिए, एक भोजन का हिस्सा जिसे आप कहते हैं गाय के लिए. तो हमारे यहाँ तो पूरी सृष्टि की जो है वो है, सुबह तुलसी के पौधे को लोग पानी चढ़ाकर पहले जो है, और उसके बाद जो है वो करते हैं, क्या कहते हैं, आगे अपना दिन शुरू करते हैं. तो हमारे यहाँ जो है वृक्ष हों, पशु हों, पक्षी हों, एक सस्टेनेबल जो है वे ऑफ लाइफ हमने जो है, लेकिन वहीं हम पश्चिम के प्रभाव में आकर जो है हमने उसे खो दिया था. और जैसे योग वापस आया है, वैसे ही आयुर्वेद और होम्योपैथी और अल्टरनेटिव मेडिसिन सिस्टम भी जो है. और एक चीज मैं आपको यहाँ ये बता देना चाहता हूँ, बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि ये एलोपैथी और आयुर्वेद और होम्योपैथी, ये ना, या एलोपैथी एंड द ऑल्टरनेटिव हीलिंग सिस्टम, दे आर कंपीटिंग विद ईच अदर, दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, दे आर नॉट. बट वी आर गोइंग टू सी इज बेसिकली कि कैसे वो कॉम्प्लीमेंट एक दूसरे को करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, जो डायग्नोस्टिक टेक्निक्स आपकी एलोपैथी में है, दे आर ब्रिलियंट. तो आप उन डायग्नोस्टिक टेक्निक्स को यूज करके इमिजिएटली आपको पता चल सकता है देख के क्या प्रॉब्लम है एक्सरे या कैट स्कैन में, एंड देन यू कैन गो फॉर अ बेसिकली यू नो कॉम्बिनेशन ऑफ द ट्रीटमेंट. सो एंड इन मोस्ट ऑफ द बिग हॉस्पिटल इन द कंट्री नाउ यू सी दे हैव अ डिपार्टमेंट ऑफ होम्योपैथी, दे हैव अ डिपार्टमेंट ऑफ आयुर्वेदा. तो जब एलोपैथी के ट्रीटमेंट के साथ वो ऑफर करते हैं अपने पेशेंट्स को कि अगर आप चाहें तो आप इसके साथ ये वाला ट्रीटमेंट भी करवा सकते हैं. सो आई थिंक इट्स अ टाइम व्हेन ऑल दी स्ट्रीम्स आर गोइंग टू मूव टुगेदर और एक दूसरे से स्ट्रेंथ मिलेगी इनको. देखिए, पोस्ट कोरोना में एक अच्छा सवाल है, विल इट अफेक्ट प्राइसेस ऑफ एफएमसीजी? एफएमसीजी मतलब फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, ठीक है जी, प्रोडक्ट्स इन कमिंग टाइम्स. मतलब एक सवाल ये आया है जी, कीमतें बढ़ने वाली है जो है ये फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स की. फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स यानी कि वो वस्तुएं जिनका आप रोजमर्रा की जिंदगी में अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है जी. मुझे नहीं कि कीमतें बढ़ेंगी. देखिए, मार्केट में बहुत ज्यादा पैसा लोगों के पास है नहीं, कंपनियों के पास स्टॉक काफी पड़ा हुआ है पिछले 2 महीने का. कुछ कुछ स्थानीय स्तर पर थोड़ी होर्डिंग हो सकती है या थोड़ा सा प्राइस मैनिपुलेशन हो सकता है, बट आई डोंट थिंक दैट देर इज गोइंग टू बी एनी मैसिव इंक्रीज इन प्राइसेस ऑफ दिस थिंग. क्योंकि कंपनियों को भी ये है ना कि माल बेचेंगी, देखिए अल्टीमेटली कंज्यूमर के पास परचेजिंग पावर होगी जितनी, उतने में ही तो आप माल बेचोगे ना, इसलिए मुझे नहीं लगता. एंड देन द गवर्नमेंट इज देयर टू चेक एनी व्हाट यू कॉल जो है अनरीजनेबल एस्केलेशन ऑफ प्राइसेस. अगर किसी ने भी जो है गड़बड़ करने की तो सरकार जो है वो नजर रख ही रही है उसके ऊपर. और वैसे भी मार्केट में आजकल हर प्रोडक्ट के कॉम्पिटिटर्स इतने सारे हैं कि अगर कोई अननेसेसरी अपने प्रोडक्ट की कीमत बढ़ाएगा, देखिए 2 ही तरीके से प्रोडक्ट की कीमत बढ़ती है, या तो सारी कंपनियां आपस में हाथ मिला लें, जिसको हम बोलते हैं कार्टलाइजेशन. तो कार्टलाइजेशन को रोकने के लिए सरकार के पास बहुत सारे नियम और कानून है और सरकार इन सब चीजों पर नजर रखती है. और या फिर दूसरी चीज ये कि एक कंपनी तय कर ले कि अच्छा मेरा मार्केट में 30% शेयर है, तो मैं जो है अपनी जो चीजों की दाम बढ़ा देती हूँ। तो ऐसी स्थिति में आज भारत का जो आम उपभोक्ता है, चाहे वो दूर दराज के गांव में भी हो, उसके पास विकल्प है। भाई मैगी अगर अपना रेट बढ़ा देगा तो आपके पास टॉप रेमन है ना, वोल्टास अगर अपना रेट बढ़ा देगा जो है, तो आपके पास जो है वो सैमसंग है, डाइकिन है, नेपोलियन है, बहुत सारे एसीज हैं आपके पास जो है। तो इसलिए, और अगर बजाज ने अपने रेट बढ़ा दिए तो आप यामा चले जाइए, टीवीएस चले जाइए, सुजुकी मारुति ने अपने रेट बढ़ा दिए तो आप जो है आप फोर्ड की गाड़ी खरीद लीजिए, हुंडई की गाड़ी खरीद लीजिए। तो देर आर एनफ ऑप्शन इन द मार्केट फॉर एवरीबडी, सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट। बेसिकली मार्केट इटसेल्फ विल बैलेंस इट आउट। देखिए क्या है कि एक मुझसे सवाल पूछा है कि रियल एस्टेट का फ्यूचर जो है वो क्या है। देखिए रियल फ्यूचर तो एक्चुअली 3-4 साल पहले ही तय हो चुका है। देयर वॉज एन मेरा मानना ये है कि रियल एस्टेट में बहुत ज्यादा आर्टिफिशियल डीमोनेटाइजेशन होने से पहले एक बड़ा ही आर्टिफिशियल प्राइस हाइक था। लोग बेसिकली एक तरीके से होर्डिंग कर रहे थे रियल एस्टेट की, 10-10, 12-12 फ्लैट्स जो है, 5-5, 6-6 बिल्डिंग खरीद के रख रहे थे, और उसके बाद देन देवर सेलिंग देम आउट एट स्काई रॉकेट, मतलब स्काई हाई प्राइसेस। तो ये एक आर्टिफिशियल प्राइसिंग थी, वो डीमोनेटाइज, और वो इस वजह से थी क्योंकि मार्केट में बहुत सारा काला धन था, तो वो काला धन जो है उसमें लगता था रियल एस्टेट में। तो डीमोनेटाइजेशन के बाद जो है वो काले धन वाला मामला समाप्त हो गया और इसी वजह से अचानक कीमतें गिरी। हाँ एक चीज जरूर होने वाली है, मुझे लगता है कि कमर्शियल रियल एस्टेट जो है उसके लिए थोड़ा एक नया जो है वो प्राइसिंग इमर्ज होगी। उसका कारण ये है कि लॉकडाउन के दौरान बहुत सारे जो दफ्तर, बहुत सारे क्या मतलब सभी दफ्तर कमोबेश जो है घर से ही चल रहे हैं, तो बहुत सारे लोगों को ये एहसास हुआ है, बहुत सारी कंपनियों को ये एहसास हुआ है कि हम लोग एक बहुत ही एक्सपेंसिव, बहुत ऊंचा किराया देते हैं रियल एस्टेट का, कमर्शियल स्पेस लेते हैं, वहाँ ऑफिस बनाते हैं, बड़ा महंगा किराया होता है और वो सब देते हैं, तो उसकी ज़रूरत इतनी है नहीं। तो उस जितनी स्पेस कंपनियों ने ली हो, बहुत सारी कंपनियां, खासकर जो टेक्नोलॉजी ड्रिवन कंपनियां हैं, जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल एक्सटेंसिवली करती हैं, उनका जो है मुझे लगता है कि वो छोड़ेंगी बहुत सारा। तो कमर्शियल रियल एस्टेट जो है दैट इज गोइंग टू टेक बेसिकली अ बिग हिट आई थिंक, और उसके प्राइसेस नीचे आएंगे, उसकी सप्लाई मार्केट में ज्यादा रहेगी, डिमांड कम रहेगी। सो आई थिंक दैट इज, बट 1-1.5 साल बाद जो है बाय द टाइम द फॉरेन कंपनी स्टार्ट कमिंग, सो आई थिंक द सिचुएशन विल बैलेंस इट आउट। देखिए ये क्या है, बी कोरोना और रिसेशन, इट्स पुअर पीपल हु आर हिट मोर, सो व्हाट डू वी लर्न फ्रॉम कोरोना इन लार्जर पर्सपेक्टिव। देखिए सवाल है कि कोरोना हो या मंदी आए तो गरीब आदमी पे सबसे ज्यादा मार पड़ती है। देखिए मार सभी पर पड़ती है असल में, और लेकिन क्या है कि हमारे यहाँ पे जो है वो स्टेट की तरफ से एक सोशल वेलफेयर सिस्टम नहीं है, तो इसलिए गरीब आदमी को तकलीफ जो है ना वो ज्यादा होती है। और ये बात आपकी ठीक है, और मुझे लगता है कि जैसे मैंने आपको कहा ना विकास की जो भारतीय अवधारणा है, देखिए मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। ऐसा है, आप अगर सभी अपने इलाकों में देखिए, या जब आप किसी तीर्थ स्थान पर जाते होंगे या कहीं भी जाते होंगे, तो आपको बड़ी बड़ी धर्मशालाएं दिखती होंगी। इनमें से ये बहुत सारी ऐसी धर्मशालाएं हैं और सब वो जो है जो सैकड़ों साल पहले बनी थी। अगर आपको ध्यान हो, जब हमारे यहाँ पे जो भी हिंदू, जब करीबन 1,000 साल पहले तक जो है, उससे पहले ऑल द हिंदू किंगडम्स, उस समय जब हिंदू शासकों के शासनकाल में जो नगर सेठ होते थे, जो शासक होते थे, जो बड़े पैसे वाले होते थे, वो क्या करते थे, वो धर्मशालाएं बनवाते थे, वो प्याऊ बनवाते थे, ठीक है, जिसको आप CSR कहते हैं। बेसिकली क्या है कि एक वेस्ट का जो डेमोक्रेसी वाला भी जो मॉडल हमने अडॉप्ट किया ना, जो है नेशन स्टेट वाला, उसमें क्या है कि हर चीज के लिए हम सरकार की तरफ देखते हैं। इससे बड़ी विडंबना क्या हो सकती है कि लोगों ने घर में टॉयलेट भी बनाने हो तो उसके लिए सरकार की तरफ देखते हैं। आप अपने घर के अंदर जो है शौचालय भी अगर बनाना चाहते हैं, तो आपने लोगों को ये अंदर ये बात डाल दी कि जो करेगी सरकार करेगी। तो ये जो गरीब आदमी वाला आपने पूछा ना, मैं उसका ये कहना चाहता हूँ कि हम हर चीज के लिए सरकार की तरफ क्यों देखते हैं। समाज में एक बहुत बड़ा वर्ग है जो संपन्न वर्ग है, तो वो क्यों अपने साथ के वर्क को जो है इंश्योर नहीं करता? अगर आपके घर पर कोई मेड काम करती है या कोई सर्वेंट काम करते हैं या आपका कोई ड्राइवर है, तो क्या आप ये चीज़ इंश्योर नहीं कर सकते कि आप उसके बच्चे की पूरी एजुकेशन जो का जिम्मा आप अपने ऊपर लें, अगर ईश्वर ने आपको उसके संसाधन दिए हुए? तो हम हर चीज़ के लिए सरकार की तरफ देखते हैं, और अल्टीमेटली सरकार क्या है? सरकार, गवर्नमेंट इज अ सब फंक्शन ऑफ सोसाइटी। सरकार समाज का एक छोटा सा हिस्सा है और समाज उससे बहुत बड़ा है। हम उस छोटे से हिस्से से जो है वो समाधान की उम्मीद कर रहे हैं, जबकि एक पूरा जो बड़ा हिस्सा है वो चुपचाप बैठा हुआ है। तो ये जो गरीब गरीबों वाली जो समस्या है, जो समाज में हैव्स और हैव नॉट्स वाली समस्या, समाधान कोई सरकार नहीं निकाल सकती, कम से कम हिंदुस्तान की 130 करोड़ जनसंख्या को देखते हो तो नहीं निकल सकता। और इसका सस्टेनेबल समाधान भी यही है कि समाज का वो हिस्सा जिसके पास संसाधन है वो ये सुनिश्चित करे कि समाज में जिसके पास संसाधन नहीं है उसका जो है वो हम ध्यान करें, और अल्टीमेटली उससे आप ही के व्यवसाय को फायदा होगा। समाज में अगर प्रोडक्टिवनेस होगी, समाज में लोगों की प्रतिभा बढ़ेगी, समाज में एक स्थायित्व का माहौल होगा, एक बंधुत्व का माहौल होगा, एक एक्रीमोनी कम होगी, कटुता कम होगी, आपसी संघर्ष कम होगा, तो उससे सभी तो बेनिफिट करते हैं ना जो है। तो इसलिए ये समाज की जिम्मेदारी है, मैं तो सरकार की जिम्मेदारी बहुत ज्यादा मानता ही नहीं। अपॉर्चुनिटी बाय बोथ हैंड्स, हम अवसर हमारे पास आएंगे, बहुत अच्छे अवसर आएंगे, पर सवाल ये है कि क्या हम उन अवसरों का दोहन करने के लिए, उन अवसरों का उपयोग करने के लिए तैयार हैं या नहीं है। थैंक यू। अब आप चाहें तो आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। बहुत सारे ऐसे हैं सवाल में जिनका कि जवाब नहीं दे पाया हूं, तो आप लोग जो है मुझे मतलब मैंने कोशिश तो की है, और आप मैं मुझे लगता है कि अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग एक सेशन और इसके ऊपर कर सकते हैं। तो आई थिंक इट्स इट इट वॉज अ प्लेजर जो है टू बी यू नो विद यू पीपल, एंड आई होप दैट आई वॉज एबल टू शेयर माई टू टू ब्रिंग इन सम पर्सपेक्टिव जो है। और बाकी मैं सिर्फ एक ही चीज़ कहूँगा आपसे कि पॉजिटिव एटीट्यूड बनाए रखिए, एंड आई एम टेलिंग यू जेन्यूनली दैट एंड आई बिलीव इन इट एंड आई हैव अ लॉजिक टू बिलीव इट दैट ये डेटा बता रहा है, ये इंडिकेशंस बता रहे हैं पूरी दुनिया के, ये हिस्टोरिकल ट्रेंड्स बता रहे हैं कि हिंदुस्तान की आर्थिक व्यवस्था बहुत अच्छी होने वाली है, हमें कोई समस्या नहीं होगी, हम कोविड-19 के इस मार से भी बड़े आराम से निकल आएंगे। भारत जो है एक विश्व की जो है महाशक्ति के रूप में, लेकिन ये सैन्य महाशक्ति नहीं होगी, ये एक सांस्कृतिक महाशक्ति होगी, ये एक आध्यात्मिक महाशक्ति होगी, और हम अपने देश का भी जो है वो को भी पहले से बेहतर कर पाएंगे, और दुनिया को बेहतर बनाने में भी भारत का जो है वो योगदान बहुत बड़ा होगा। द होल वर्ल्ड इज लुकिंग एट अस नाउ, एंड इट इज बेसिकली नाउ इंडिया सेंचुरी, इट इज आवर सेंचुरी, एंड वी आर गोइंग टू द वे टू द वर्ल्ड विद ऑल हम्बलनेस। हमें किसी के कल्चर को क्रिटिसाइज नहीं करना, पे वो नहीं करना है। हर एक चीज का एक समय होता है, कैपिटलिज्म का एक समय था, कम्युनिज्म का एक समय था, अब जो है विकास की जो भारतीय अवधारणा है अब उसका समय है। सो बी पॉजिटिव, स्टे होम, स्टे सेफ, एंड आई वॉन्ट टू थैंक यू मृणाली जी कि आपने मुझे बुलाया। आई एम थैंकफुल टू द ऑर्गेनाइजर्स, सो आई विल कंक्लूड नाउ। थैंक यू वेरी मच, एंड आई होप दैट यू विल गो बैक एंड यू विल एंजॉय योर इवनिंग टी। थैंक यू।
20 years of existence. Two universities. 23 educational institutes. Offering 137 courses. Rai Sony Group of Institutions. A vision beyond.